हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे
माध्यमिक जो कादंबरी आरंभ किया है, कल हमने हम लोगों ने कल मैंने पिछली बार आया था ये बदला था इसका रिपीटेशन करके अभी अनिश्चितता शक्ति तक हम लोग पहुंचे। माता जी भक्ति दो प्रकार की है, निश्चितता और जिसे हमने अनिश्चितता तक अभी कुछ कुछ कहना उसको हमने बताया। अनर्थ में नवा अपराध है, सेवा अपराध है और भी बहुत तरह के अनर्थ हमने बतलाया। इसीलिए हम चाहते हैं उन्हें भजन ठीक से नहीं करता, रुचि नहीं मिलती, तेज नहीं मिलता। यदि एक आदमी 3 लाख हरिनाम कर रहा हो, भागवत भी पढ़ रहा हो, हरिकथा सुन रहा हो और चित्त प्रवृत्त नहीं हो जाता, चिंतित नहीं हो जाता, रोमांचित नहीं हो जाता, तो समझो कि कहीं हमारे साधन भजन में गड़बड़ी। भगवान का नाम इतना मधुर, इतना शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, नाम कराया एक व्यक्ति और जब उसका नाम निकले चित्त को प्रवृत्त कर देगा, आंखों से आंसू की अग्रिम धारा बहने लग जाए, शरीर का होश नहीं है। तो हम लोग इतना करते हैं होता है तो सोचना चाहिए, फल देकर के हम किसी कर्म का अनुमान कर लेते हैं, जब तक कि फल तो हो नहीं रहा, इसलिए कुछ अपराध हो जाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए वो उपाय करना चाहिए जिससे कि ये चीजें हत्या और भगवान के नाम का श्रवण का चिंतन का ये प्रभाव फल इन्हें पहले ये हम लोग को समझना भी जरूर है, नहीं तो हो नहीं रहा, ये तो सूची का लक्षण चाहिए है। इसलिए पहले साधु निंदा, इसके बाद में गुरु अवज्ञा, इन दोनों के संबंध में हमने बताया क्या उस तरह तरह के उदाहरण दे करके जैसे कर सकते। वैष्णव की निंदा हमने की है, उनके प्रति अपराध हुआ है और अब क्या हम नहीं करेंगे, बस काम खत्म नहीं हुआ, उसे अपराध क्षमा कराना होगा, अब से नहीं करेंगे, ठीक है नहीं करेगा, या करके जेल वहां पर जज को कह दिया मैंने इनका मर्डर किया है तो अब से नहीं करूंगा, छोड़ देगा नहीं छोड़ेगा, कानून उसको छोड़ने नहीं देगा, जब ये छोड़ता है तो उसी के ऊपर मैं फिर ब्लेम आएगा। इसमें यही नहीं है कि आज से मैं अपराधी नहीं, जिसके प्रति अपराध हुआ है गुरु जी के पास वैष्णव के पास में क्षमा करो। और हमने ये भी कहा कभी कभी दुर्भाग्यवशत और अज्ञानवशत वैष्णव में दोषों का आरोप हम करते हैं दोष नहीं रहने पर भी, जिस प्रकार से हमने उदाहरण देकर के बताया पार्वती जी ने चित्रकेतु महाराज जी के वचनों में दोष का आरोप किया, वो तो शंकर जी की प्रशंसा कर रहे थे। इसी तरह से हम कनिष्ठ अधिकारी लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते, ज्ञान में अनजान में उनकी हम निंदा अवज्ञा इत्यादि करते हैं, इसलिए ऐसे मैं नहीं करूंगा ये कहने नहीं, निरंतर हरिनाम करना पड़ेगा और जिनके चरण में अपराध हो उसे क्षमा मांगो। अरे वो तो बड़े छोटी स्वभाव के हैं, मानते नहीं है तो वो वैष्णव कैसे है, तुम्हारा अपराधी नहीं है समझते छो। भक्ति में कुछ विचार है, मैं आगे बतलाऊंगा इस विषय। तीसरा हमने बतलाया लिखा, तीसरा नवा अपराध, शिव में और विष्णु में भेद मत देखो। कोई शिव उपासक होकर के कहता कि मैं तो शिव को उपासक हूं, विष्णु के मंदिर में नहीं जाएंगे, और कोई वैष्णव लोग है वो कहता है कि शिव के मंदिर में नहीं जाएंगे, शिवों से कोई संबंध नहीं, जो ऐसा करता उसका हम संग नहीं करेंगे, शिव नाम हम सुनना नहीं चाहते। चित्र से हम जानने अनजानने कुछ अपराध संकट जी के प्रतिकार देते हैं, इस विषय में भी सावधान रहना चाहिए। इसको बचने के निकट में जो तत्व है जानने से तब ये अपराध नहीं बने तो होगा। हम भी पहले शंकर जी की, राम के साथ में शंकर जी की आराधना करता, फिर जब आया तो कुछ धारणा बदली, हमने सोचा जो रानी की उपासना करने के लिए शंकर की मिली, फिर वैष्णव के संग में आया गुरु जी इत्यादि के संग में, नहीं शिव को यथाजत सम्मान देते हुए भगवान का प्रेम। उसी की प्रणाम में भी लिखा है शंकर का द्रोही और मेरा भक्ति ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकेगा, तो ये कैसे होगा। इसलिए कभी कभी वैष्णव शंकर जी को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, अपने इसका विचार सुन करके समझ करके इसका एहसास से जरा दूर रहना चाहिए। शिव तत्व और कहीं कहा गया जस्तु नारायण देवम ब्रह्म रुद्राज देव दय समर्थेन विच्छेद सपाषंडित, जो लोग नारायण जो सबसे आदि देव है सबके मुंह उनके बराबर ब्रह्मा और विष्णु को बराबर मानता है तो वो पाषंडिक है, उसका मुख दर्शन मत करो, ये कहा गया। और फिर यहां कह रहे हैं शिव और विष्णु में कोई अंतर मत देखो, नहीं तो पाषंडिक हो जाओगे, अपराध हो जाओगे। तो ये तो दो तरह की बातें हुई, क्या करना चाहिए। साधारण कनिष्ठ वैष्णव लोग या मध्यम अधिकारी के प्रथम जो मध्यम के कनिष्ठ है या मध्यम के मध्यम है वो समझ नहीं पाते ये क्या करना चाहिए, वो निंदा करने लगते हैं, शिव के मंदिर में नहीं जाते, शिव चतुर्दशी पालन नहीं करते, हम लोग नहीं करेंगे तो पाषंडी हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया, विचार किया विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी, हम लोगों को क्या करना चाहिए। अधिकांश भारत में जनता का या सब लोगों का साधारण में शंकर जी के प्रति भी है, राम और कृष्ण के प्रति भी है, ऐसे हम लोगों के रक्त में वो पहले से ही चला रहा है। जो भी कोई कोई कहता है जो शंकर के मंदिर में मत जाओ, तो हृदय में बगावत होती है, ये विचित्र हो जाएगा,
ये परंपरा ही ठीक नहीं।
तो जो नौसिखिए होते हैं ना वो कहते हैं कि सीटू कुछ नहीं है, काली और दुर्गा ये सब कुछ नहीं है बेकार, ऐसा मत कहो, ये भगवान के ही शक्ति दी हुई ये सब चीजें अधिकारिक देवता है, उनका जथा जथा सम्मान होना चाहिए। एक चीटी में भी भगवान का अधिष्ठान जाकर के उसको सम्मान देना चाहिए जो भजन करना चाहिए। शंकर जी में और कृष्ण में या नारायण तत्व में भगवत तत्व में ये दोनों की दृष्टि से एक अभिन्न तत्व है, दो तत्व नहीं। इस चीज को जानने के लिए ऐसा समझो कि चेतन जो वस्तु है, चिद वस्तु है, वो दो प्रकार की होती है, चिन्मय वस्तु दो प्रकार की होती है, एक होती है स्वतंत्र चेतन और एक होता है अस्वतंत्र चेतन। हमारे अंदर में जो जीवात्मा है ये अस्वतंत्र चेतन है, अभी माया के द्वारा आच्छादित है, माया के अनुसार में हम काम करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार करने पर भी नहीं कर सकते, इसलिए हम अस्वतंत्र हैं, अभी बद्ध हैं। मुक्त होने पर भी भगवान के स्वतंत्र रहे, इसमें किसी भी स्थिति में ये स्वतंत्र नहीं रहेगा। और एक स्वतंत्र चेतन है, वो कौन है? नारायण है, कृष्ण है, मूल सत्य है, वो कृष्ण है। उन्हीं के अंश नारायण विष्णु इत्यादि सभी ये स्वतंत्र तत्व है, स्वतंत्र चेतन। अब ये स्वतंत्र चेतन भी दो प्रकार के होते हैं, तो मैंटली सुनेंगे तब समझ में आएगा, साधारण नहीं। आज जो कुछ थोड़ा सा आगे अग्रसर है वो समझेंगे। तो कहते हैं एक माया स्पर्श रहित और दूसरे हैं माया स्पर्श युक्त। नारायण इत्यादि है, माया से कोई भी संबंध नहीं है ये जगत। कृष्ण, राम, निसिंह, कल्कि, वामन जितने भी भगवान के स्वांश अवतार हैं, उनसे माया का कोई भी स्पर्श नहीं है, ये विशुद्ध तत्व है। किंतु माया का स्पर्श जिनसे हो जाता है, जिस ईश्वर का, माया में बद्ध नहीं होते। दो प्रकार का है, एक कपड़े को से ओढ़ करके अपने को ढक लेना है, एक बार ना? कपड़े से अपने को ढक लिया। और एक होता है एक कपड़े को किसी रंग में रंग डालो, ये तो अंतर समझ में आ रहा है। कपड़े को रंग में डाल दो, रंग के साथ में वो मिल गया, किंतु गेरू रंग में हम जो रंगते हैं, इसको साबुन देकर के अच्छी तरह से देकर के देने से इसको सफेद हो जाता है, किंतु मिल गया। कपड़ा उससे अलग है, कपड़े पर रंग लगा और मालूम होता है कि वो कपड़े के रग रग में मिल गया, किंतु कपड़े के में वो रग रग में नहीं मिला, उसको साबुन से इत्यादि से इसको दूर कर दिया जा सकता है ना? और एक होता है अपने लीला के लिए जगत में अवतरित होकर के और मनुष्योचित जो लीला करते हैं, प्राकृतिक या नर्वत लीला जो करते हैं, तो माया से उनका संपर्क नहीं, कभी कभी माइक भाव से अपने को ढक लेते हैं। कैसे? जोग माया के द्वारा, जिसे कि साधारण आदमी नहीं समझते, वो कृष्ण इत्यादि। और शंकर ऐसा तत्व है कि है तो स्वतंत्र किंतु माया स्पर्श से युक्त है, कपड़े से जैसे रंग देते हैं ऐसे तामसिक गुण से रंगे हुए हैं, किंतु इनसे उनका संपर्क नहीं। यहां जरूरत काम खत्म हो गया और जो दिया बस खत्म हो गया, माया से संपर्क हो गया। एक हद ये है, लाख होता है, लाख को पिघला दो और उसके अंदर में रंग मिला दो, अब फिर वो सूख गया, अब उसको धुलो तो धुलाई करो तो लाख साबुन दो नहीं छूटेगा, कभी छूट नहीं सकता। जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता है, जीव में कभी कभी भगवान की शक्ति का प्रवेश होता है, इसको आवेश अवतार कहते हैं। जैसे व्यास, पृथु, ये सब कपिल देव जी, ये जीव तत्व में भगवान का आवेश है, वो स्वांश नहीं है। और जगत का काम करा लेते हैं परशुराम जी जैसे, भगवान के अवतारों में एक कहे जाते हैं, किंतु वो स्वांश नहीं है, विभिन्न अंश उनमें भगवान शक्ति प्रवेश करा करके जगत का काम करा लेते हैं। रामचंद्र जी ने उनसे वो छीन लिया, धनुष यज्ञ में, धनुष यज्ञ में नहीं, स्वयंवर में रामचंद्र जी लक्ष्मण जी आए, धनुष तोड़ा, तब उसमें परशुराम जी आए, एक ही बात पृथ्वी का संहार किया और अत्याचार को और ये सब चीजों को, पापों को जगत से दूर करने की चेष्टा, ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं था, दूसरों के लिए सम्मान, क्योंकि भगवान की शक्ति उन्होंने प्रवेश करके ये काम कराया
है। जी
है जीव तत्व। और जो ही रामचंद्र जी और उनका साक्षात्कार हुआ, लक्ष्मण जी ने क्रोध का उद्रेक उनमें कराया और जितना क्रोध होता गया उनका वो अवकार का जो भगवान का जो शक्ति थी राम में चलती गई, अंत में सब चली गई और ये केवल ऋषि हो गए। इसलिए ये कैसा, ये जीव में आया, क्योंकि ये साक्षात कृष्ण और राम नहीं है, किंतु कल्कि जी हैं, वामन जी हैं, कच्छप अवतार हैं, नारायण इत्यादि हैं, वो सभी लोग कृष्ण। शंकर जी ऐसे नहीं है, शंकर जी कैसे हैं? माया से स्पर्श किया हुआ, स्पर्श करके जगत काल में तामसी गुण के द्वारा जगत का ध्वंस करते हैं, संहार करते हैं, सृष्टि कराते हैं, ये सब करते हैं। इसलिए किंतु जब वो कर रहे हैं तामसी गुण को लिए हैं, तामसी गुण छोड़ देंगे वो सदाशिव हो करते विष्णु हो। इसलिए शंकर में और राम में, शंकर जी में और उनमें अंतर में तत्वता एक है। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है जैसे दूध है, दूध में दही डाल करके या कोई खटाई डाल दो तो वो जम जाएगा, किंतु जमने पर भी वो बदल तो गया रूप, किंतु तब तो उसमें जो घी है जो दूध में था दही में भी, इसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए दही भी दूध ही है, किंतु दही दूध नहीं होगी। जब तामसिक रूप से जगत का संहार इत्यादि करते हैं उस रूप में भगवत तत्व से कुछ थोड़े से अलग से दिखते हैं, किंतु तत्वतः एक है, दही और दूध तत्वतः एक है। उसी प्रकार से शंकर जी हरि और हर एक तत्व है। ब्रह्मा जी का ये नहीं है, ब्रह्मा जी जीव तत्व है और उसमें भगवान प्रवेश करके उनसे जगत की सृष्टि करा देते हैं। ब्रह्मा जी कितने जन्मों में, 100 जन्मों में वैसा यदि कार्य करेंगे तब शिवत का लाभ करेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ शंकर है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, तामसिक गुण से राजसिक गुण श्रेष्ठ होता है, विरक्त मत होंगे तो ऐसा सुनेंगे ये तत्व काम करेंगे, रुचि इसमें नहीं लगेगी, ये तत्व है ना, किंतु प्रभु थोड़ा सा सुनिए, मैं रुचकर बना करके कह रहा हूं। सत रज और तम है, इसमें तम से श्रेष्ठ है रज, रज से श्रेष्ठ है, ये बात ठीक है ना। शिव जी तामसी गुण के अधिष्ठात्री देवता है और राजसी के हैं ब्रह्मा जी और विष्णु है सत्य, तो सत्य दोनों से श्रेष्ठ है, ये बात तो ठीक है, किंतु शंकर जी तामसी गुण के अधिष्ठात्री देव हो करके भी ब्रह्मा जो राजसिक है उनसे श्रेष्ठ कैसे हो गए, कैसे हो गए? इसको इस प्रकार से जीव गोस्वामी ने बताया, एक लकड़ी है, एक धुआं है और एक ज्वलंत अग्नि है ना। अग्नि ज्वलंत है, ये सप्त गुण का परिचय है, ये विष्णु तत्व है, उसमें धुआं नहीं है। और जब केवल धुआं ही निकल रहा हो, केवल धुआं निकल रहा हो तो उसे आंखें बंद हो जाएगी, नाक भी बंद हो सकती है, शरीर और कपड़े को भी धुआं काला कर देगा और उसमें से अग्नि को देखने नहीं देगा, इतना धुआं ही धुआं। एक लकड़ी को भिजा करके और उसको जलाओ तो आग जलेगी नहीं, केवल धुआं धुआं दिखेगा। और लकड़ी जो है उसमें आग है ना, लकड़ी में आग है, धुआं भी नहीं है और जल भी नहीं रही है, किंतु आग उसमें है, ज्यादा घर्षण कर दो आग निकल जाए। इसी प्रकार से शंकर जी कम आता तो लकड़ी स्थानीय है, वो आंख उससे दर्द नहीं होता, आंखों में ज्वाला नहीं होता, आग नहीं दिखती है और वो धुएं से भरा पड़ा है, इसलिए धुएं की अपेक्षा ये लकड़ी को श्रेष्ठ माना गया, इसमें जब चाहो तब उसमें से आग पैदा कर दो, इसलिए शंकर तत्व को विचार की दृष्टि से श्रेष्ठ बताया है। इसलिए ब्रह्मा की अपेक्षा शंकर जी श्रेष्ठ हैं और वो भगवान के साथ अभिन्न है, इसलिए उनकी निंदा नहीं करो। मैं भगवान विष्णु की आराधना करता हूं इसलिए शंकर की नहीं करूंगा, शंकर जी को कोई सम्मान नहीं दूंगा, ये गलत है। और कहता हूं गुरु के रूप में ला तो प्रणाम तो करो, गुरु के रूप में करो, शिक्षक के रूप में करो, क्योंकि उनकी जितनी भी भागवत की शिक्षाएं हैं सब शंकर जी के माध्यम से आई है, इसलिए वैश्वानंद जथा सम्मान, इसलिए शंकर जी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तब आप तो इतना बतला रहे हैं और भागवत में या कहीं लिखा गया है जस्तु नारायण आदि देवम ब्रह्म रुद्रादि द्वयो समत्ते न विच्छेव सपाषंडि भवेत्तुम, आप शंकर जी को उनसे अभिन्न कर रहे हैं और उसमें लिखा है कि यदि बराबर मानेंगे अभिन्न मानेंगे तो अपराध हो जाएगा, पाषंडी हो जाएगा, तो इसके लिए कहते हैं जरा समझो। शिव तत्व दो प्रकार के हैं, जिस कल्प में वैसे शंकर जी नहीं आते
ऐसा बहुत कम चांस होता है। जिस समय में किसी कारण से वो नहीं आते तब जीव तत्व में कुछ अपनी शक्ति को प्रकाश करके विष्णु शिव तत्व का काम कराते हैं। ये जीव तत्व होते हैं। इस जीव को और ब्रह्मा जी को कृष्ण के बराबर राम नारायण के बराबर मत अभिन्न मत समझो। किंतु जो संकट तत्व है यथार्थ जो जिसको सदाशिव कहा जाता है वो तत्व तय एक है ऐसा समझो और उनके प्रति अनादर मत करो।
ये कभी कभी होता है।
ये कभी कभी
जब शिव जी स्वयं कृष्ण विष्णु ना आके किसी जीव में अपना शक्ति भेज सकता है
उस समय उस जीव को और कृष्ण को बराबर समझेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अजय इतना तत्व हम कैसे जानेंगे साधारण आदमी। अरे भक्ति में प्रवेश करने के लिए चेष्टा होने पर हम अभी कंप्यूटर से क्या क्या देख रहे हैं क्या क्या आश्चर्य बातें कर रहे हैं और इतनी थोड़ी सी बात नहीं समझ में आएगी। भजन में प्रवेश करने पर कनिष्ठ अधिकारी में जब से हम छोड़ करके आगे बढ़ने लगे ये चीजें यदि हमारे समझ में आ सकती है बिना पढ़े लिखे आदमी तो आप लोग तो पढ़े लिखे हैं जरूर हो जाएगा। इसलिए संतों के पास में जाने से ये सब चीजें समझ में आती है। अंततः निंदा मत करो। यदि सम्मान नहीं दे सकते तो निंदा मत करो। यदि हो गया है ऐसा तो जो कैसे हो गया हमने तो किया नहीं इस जन्म में दूसरे जन्म में हो गया होगा अपराध तो जरूर है। इसलिए ऐसा करो निरंतर हरिनाम करो और फिर से ऐसा मत करो। हरिनाम सब में करना पड़ेगा। जितने प्रकार के अपराध है उनमें हरिनाम में मुख्य है वो हरिनाम करते चलो और फिर ऐसा न करो। एक और बात चौथी चीज श्रुतियों की निंदा मत करो। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा करता है जो तत्व को निंदा।
इसमें एक प्रश्न आ
रहा है क्या
ब्रह्मा को भगवान ने अपना एक शक्ति दी तो वो उसको शक्ता वे सत्कार मानेंगे क्या?
नहीं उसको गुणा बताते
गुणा बताते
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणा
नहीं परशुराम को एक शक्ति दी
हाँ, वो सत्ता सत्ता वे
इन दोनों में कैसे वो समझेंगे?
इन्होंने दिया है
गुण का संचार किया
गुणों का संचार किया तामसी गुण का और उनमें बल शक्ति दिया उसमें शक्ति दी जैसे नारद जी में भक्ति शक्ति दी व्यास में भक्ति शक्ति कपिल में ज्ञान शक्ति दी पृथ्वी में पालन की शक्ति दी ऐसे ऐसे शक्ति दिया
करते सत्ता विषय अवतारो नारायण को भी हम एक
नहीं नहीं कहेंगे
कई कई जगह परशुराम को
आवास आवेश नहीं जानने से ऐसा। अब एक दूसरी चीज इसमें भी हमको सावधान रहना चाहिए क्या श्रुतियों के को निंदा मत करो। श्रुति माने वेद गीता भागवत रामायण पुराण ये सब निंदा कैसे होती है? एक जगह लिखा है जो कर्म करो कर्म करो और एक जगह कहते हैं कर्म से कभी भी भक्ति नहीं होगी कर्म मत करो पास चला दो
शिवजी को तामसिक को क्यों दिया?
उसमें तमोगुण तामसिक दिया नहीं
स्लो नहीं होगा नहीं
अरे भाई बहुत जल्दी बहुत तेज मत कर
भाई
ये तो हमारा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। एक सांप निकला ना मैंने कहा इससे मारो हाथ से मारेगी क्या करेगी एक लठिया ले लो और लठिया से सांप को मार करके लठिया भी फेंक दो एक कांटा बड़ा है पैर में तो वो कैसे निकलेगा? एक कांटे से ही निकलेगा सुई भी कांटा है निकाल करके तुमको सुई की भी जरूरत नहीं कांटे के लिए दोनों को फेंक दो। ऐसे शंकर जी जगत की सृष्टि करते हैं तो असुरों का संहार जीवों का पालन करने के लिए कुछ ऐसे उनको काम करने पड़ते हैं इसलिए प्रभु ने उनके लिए अच्छा इसको साथ में लेकर के इस काम को करते इस तरह से। अब स्थितियों की निंदा उसमें कहीं लिखा है जब क्या अर्थात कर्मणो लोकमन कर्म बंदन तदर्थम कौम कम देय मुख्य संग समाचार पहले तो लिखा जो सत्कर्म करो बिना सत्कर्म किए किसी की चित्त शुद्धि नहीं होगी। माता पिता का आदर करो गुरु का आदर करो पशु पक्षी जितने भी उनके जैसे हैं ये सब का कुछ आदर करो और फिर कहा भगवत भक्ति के स्टेज में जब ऊपर चला जाता है तो लिखा सर्वधर्मान परित्यजमान एकम शरणम ब्रजा ऐसा क्यों कहा? पाठ करते जो करो करो यदि तुम ये कहेगा मैं नहीं कर्म करता तो मिथ्याचारी सब उच्चते, क्या है उसमें? नहीं नहीं, मिथ्याचारी सब उच्चते, मैं कर्म नहीं करता, ये यदि कोई कहता है मिथ्या।
यदि हम वर्तम जातो समय समझते मम वर्त मन वर्तते मन,
नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं,
ये नहीं, ये दूसरा अध्याय था, मिथ्याचारी सब उच्चते। ये श्वास लेना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, इसके बिना कोई रह सकता है? खाना भी कर्म है। अर्जुन कहता है जिस समय नहीं लड़ाई करूंगा तो मैं नहीं कर्म करूंगा, यदि ऐसा कहता तो मिथ्याचारी है, कर्म करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया शास्त्र में विवाह करना चाहिए, शास्त्र में दिया गया, भागवत में आया प्रसंग, परीक्षित जी को सुखदेव जी का यज्ञों में पशु की हिंसा की जाती है, कहीं कहीं मांस खाने का भी बतलाया गया, किस लिए? इसलिए कहा गया एक व्यक्ति है जब किशोरावस्था में पहुंचा, मां बाल कुछ नहीं देखता, भोगियों का इधर उधर डोल रहा है, उसने कहा कि विवाह करके एक स्त्री के साथ में रहो, तुम इसलिए बली ब्रह्मचर्य है, किस लिए? उसकी व्यभिचारिता को रोकने के लिए विवाह की व्यवस्था की गई, इसलिए नहीं कि खुला इधर उधर में डोलते रहो, स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए दोनों के लिए। यज्ञ में कहीं सुरापान की विधि लिखी गई, किस लिए? मद को छुड़ाने के लिए, शराब को छुड़ाने के लिए, जैसे ये विवाह किस लिए व्यवस्था की गई? व्यभिचारी होकर के मत घूमो इधर उधर, नहीं तो लोगों से झगड़ा होगा, तकरार होगा, मारपीट होगी, तुम मारे जाओगे और इस लोक में परलोक में सब जगह तुम्हारी निंदा होगी, इसलिए एक स्त्री के साथ में एक पति के साथ में रह करके अपना जीवन का निर्वाह करते चाहिए, ये विधि दी गई, इसलिए उच्छृंखल होने से बचाने लगे। दूसरी बात, यदि मांस खाना है तो पहले लोग खाए हैं, तामसिक लोग खाएंगे, जो अत्यंत तामसिक व्यक्ति है, पशु के समान है, आप किसको किसको रोकेंगे? आप बाघ को खाने से रोकेंगे? और ऐसे बाघ के स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनको रोकेंगे? यह असंभव। इसलिए वहां पर कहा गया यदि तुमको खाना है तो अच्छा यज्ञ करो, उसमें यज्ञ में एक पशु की हिंसा करके, बकरी इत्यादि की, और सबको खिला करके जो तुम्हारे आदमी है, और तब खाओ। अंकुश लगाया गया जहां तहां जैसे तैसे काट करके खा रहा है, ऐसा नहीं, यज्ञ करो, यज्ञ में ऐसे पहले की प्रथा, आजकल की कोई ऐसी नहीं, ये भी हिंसात्मक चीज है, इसका भी मना किया गया है उनको संयम करने के लिए। इस तरह से संयम करते करते चित्त शुद्धि होगी, इसके बाद में ज्ञान होगा, संतों का संग होगा, फिर भक्ति में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए सूचियां एक तात्पर्यमय है, गीता का पहला श्लोक अंतिम श्लोक एक तात्पर्यमय है, भागवत का पहला श्लोक और अंतिम श्लोक एक तात्पर्यमय, क्या? भगवान की भक्ति करो, बस। इसके लिए कहीं कर्म की व्यवस्था दी गई, कहीं ज्ञान की व्यवस्था दी गई, कहीं तपस्या की व्यवस्था दी गई, कभी ध्यान की व्यवस्था दी गई, इसलिए इसको अलग अलग मत समझो, इसलिए स्थितियों को मत निंदा करो, वो अधिकारियों के लिए, उन अधिकारियों को संयमित करके आगे बढ़ने के लिए वो व्यवस्थाएं दी गई है, नहीं तो कहीं से ये इसमें लिखा है कि कर्म करो, हम इसको नहीं मानते। देवता की उपासना करता है, दुर्गा जी की उपासना करता है, ये भ्रष्ट है, इसका मुख नहीं देखेंगे, तो सूचियों में लिखा, भागवत में नहीं लिखा कि दुर्गा देवी की पूजा करो, जगत के लोग पूजा करेंगे कौन सी देवी? जो कृष्ण के साथ में जन्मी है, योग माया, कदे भाई विंध्याचल वासिनी दुर्गा काली, इनका नाम होगा, जगत के लोग अपनी मनोवंशा को पूर्ण करने के लिए पूजा करेंगे, इसमें कहीं विरुद्ध भाव नहीं, उनको क्रमशः उन्नत करने के लिए करते 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 तो साधुओं का संग होगा, फिर भक्ति में बढ़ जाएगी। इसलिए श्रुतियां का जो तात्पर्य है, समस्त मंत्रों का तात्पर्य भगवान की तरफ में ले जाना है, किसी का कोई विरोधी नहीं है, जो प्रकार से क्लास 1-2 का विरोधी नहीं है, एमए का विरोधी नहीं है, उसी प्रकार से सब एक लाइन में, एक ही योग, पहले कर्म योग, इसके बाद में ज्ञान योग, और अंत में कर्म योग। वो तीन नई पथ है, एक ही पथ है। पहले योग का नाम भक्ति योग, कर्म योग, इसके बाद में ज्ञान योग, इसका भक्ति योग, इसमें सूत्रों की निंदा। यदि ऐसा तुमने किया है, बहुत से भावावास में कहते हैं शास्त्रों का पत्र कहते हैं कि दोनों में सामंजस्य नहीं है, यहाँ पर एक और दूसरी जगह में विरोध हो रहा है, नहीं तुम नहीं समझेगा अभी, इसलिए निंदा मत करो, उसको समझने की चेष्टा करो। इन तरह से जितने प्रकार के अपराध हैं और सब चीजें हैं, इसका विचार हम लोगों ने किया। जब निष्ठा होगी, जब छोड़ देंगे, पूर्ण रूप में नहीं छूटेगी, कुछ आंशिक रूप में छूटेगा, अभी कुछ कुछ रहेगा, वो भावावस्था तक जाएगा, प्रेम भावने पर आत्यंतिक यह निवृत्ति होगी अपराध और इस सबसे। इसलिए निष्ठा, इसके बाद में निष्ठा का स्थान आता है। निष्ठा मैंने कब समझो, जो निष्ठा हुई कैसे समझेंगे कि हमारी निष्ठा हुई कि नहीं, इसके लिए एक मापदंड दे रहे हैं। ये दूध ठीक है कि पानी है, कि पानी मिलावट है, और कितना पानी मिलावट है, आजकल यंत्र निकले हैं ना, पहले के या भी लोग उसमें हाथ डाल करके अंगुली पर देखते हैं, नख पर देखते हैं कितना अंश पानी है, कितना कहते हैं जैसे, अच्छा दूध में पानी मिलाया है या पानी में दूध मिलाया है। मथुरा में प्राय पानी में दूध मिलाते हैं।
मक्खन भी निकाल लेते हैं।
मक्खन भी निकाल लिया, दूध देते नहीं मिल जाता। तो कहते हैं कि निष्ठा जब होगी, उसके लक्षण क्या है, अपराध इत्यादि कुछ दूर हो जाता है। उदाहरण दिया, एक आदमी है, उसको 105 डिग्री बुखार है, अपने आप कुछ नहीं खाएगा, रुचि नहीं है, उसको डॉक्टर से दवा लेकर के पथ्य के लिए थोड़ा सा दूध इत्यादि या कुछ ऐसा चीज है उसको दे, रुचि नहीं है न पीने की इच्छा है, तो भी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? यदि किसी को अपराध है, नाम में रुचि नहीं हो रही, तो क्यों हमें करने की क्या जरूरत है, रुचि से हो तो तब तक ठीक था, ऐसा प्रश्न हो सकता। उसके लिए कहते हैं जब बुखार अत्यंत तेज है, किसका बुखार, अपराध होगा, उस समय में हरिनाम में रुचि नहीं होगी, किंतु अपने कर्मों का फल, अपराधों का फल भोगने पर, भोगते भोगते जब कुछ पारा उतर जाता है, बुखार की डिग्री कम हो जाती है, उस समय थोड़ी सी भूख लगती है, उसमें भूख लगती है, और फिर थोड़े थोड़े देर के बाद में रुचि आती है, कि कभी शरीर बहुत दुर्बल रहता है, और फिर दूध की मात्रा और पौष्टिकारक वस्तुओं की यदि मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते जाए, धीरे धीरे पुष्टिकारक और शरीर भी ठीक हो जाता है, बुखार भी संपन्न होती है। तो एक भक्ति की यही स्थिति है, एक आदमी महा अनाचारी है ना, अपराधी है, उसका बुखार का इतना है जिसे नाम नहीं सुनना चाहता, भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता, ठाकुर जी का प्रसाद किधर से उधर करते थे, दो उसकी दवा दो, नहीं सुनता हरि नाम सुनाओ, जो कोई नहीं सुनना चाहता उस गली से 5-7 आदमी निकल करके मृदंग बजाते हुए हरे कृष्ण चलते बजाओ, अरे ये बड़े बदमाश है, रोज गली से निकलते हैं, कहेंगे कि तू धीरे धीरे ही उस पर ऐसा फल करेगा, जिस दिन में अरे भाई आए तो आए नहीं, क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई, इसलिए बुखार उतरते ही अब दवा काम करेगी, और जो क्षमता रहेगी वो भगवान नाम से, भगवत भक्ति से वो पूरा होती चली जाएगी, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। और व्यभिचारी आदमी, लंपट आदमी क्यों भगवान का नाम करे, भक्ति करे, ये भी संदेह करने की जरूरत नहीं है, जो जहां है स्थान में स्थित है, अपने स्थान से भगवान का ये सब करता चलेगा, बुखार धीरे धीरे उतरेगा, कैसे उतरेगा, भोगों से। भगवान ने ऐसा बनाया है कर्म चक्र, एक दिन हम का पाएगा, एक आदमी महा लंपट महा व्यभिचारी, कोई बाधा नहीं पड़ी तो बढ़ता जाता है, और 5-6 आदमी ने एक बार पकड़ करके अच्छी तरह से घुसे और देख करके खूब अच्छी तरह से उनके छक्के छुड़ा करके मुंह रगड़ दिया और उनका कोई अंग काट लिया, और थोड़ा सा नशा उतरा, और कभी अब मत करना काम पकड़ो, ऐसे देखिए बड़ी भारी कुछ, कोर्ट में केस कर दिया, 1000 रुपए का हर्जाना देना पड़ा, इस तरह से उतरता है नशा। इसलिए माया ये बड़ी दयालु है, घन में पीस करके हमारे कर्म फलों से हमको हमारा बुखार उतारती है, इसलिए प्रयास हमको। तो इसलिए जब समझो कि हमारी निष्ठा किस स्थिति, निष्ठा आई कि नहीं अभी, आपकी पहले की तरफ में अभी अनर्थ युक्त हमारा नाम हो रहा है, इसके लिए पांच चीजें। जब हरि नाम करने में, कीर्तन में, श्रवण में और स्मरण में, ये तीन चीजें हैं। क्या क्या? पहला नहीं, पहले कीर्तन, इसके बाद में श्रवण और इसके बाद में स्मरण। हरि नाम कीर्तन करने में बड़ा साल लग रहा है, क्योंकि जब किसी ने हरि कथा ताना सुनना आरंभ किया ऐसे उसको कहते हैं लय। और जब दीक्षा मंत्र वाला कोई नहीं है वहां पर, एक आदमी कह रहा है, सुन रहा है श्रवण में, और भी पांच आदमी दस आदमी बैठे हैं, उसमें लय होने में सोने में कुछ लग जाएगी, तो अभी वो मानेगी, वो तो लाख मन के पत्थर बन करके आंखों पर चढ़ जाएगी और एकदम सुना। पसंद को जब भी कुछ कमी है, कीर्तन में उत्साह हो रहा है, स्वर्ण में कुछ कुछ है कभी कभी आती है, और जब गुरु का दिया हुआ मंत्र करने बैठे, ओम या क्लिंग आरंभ किया, और साथ ही साथ में हमारे एक ब्रह्मचारी जी थे नवदीप में, ठाकुर जी का पूजा करने के लिए गए, तो पूजा करने में सबसे पहले अंधी करना होता है, गुरु का दिया हुआ जो दस मंत्र है उनको करना पड़ता है ध्यान से, तो ध्यान लगाया और पक्के ध्यान में चले गए। दो घंटा तक ठाकुर जी का दरवाजा खुला नहीं, भैया ठाकुर जी का दरवाजा किसने नहीं खुल रहा, क्या बात हो गई। तो एक हमारे महाराज जी थे नारसिंह महाराज जी, मुझे क्या हो रहा है, ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, क्या बात हुई। उन्हें तो जोर करके धक्का दिया, धक्का देखा देखा जैसे वो चुपचाप। कीर्तन में थोड़ा
कम
होता है, उससे अधिक होगा श्रवण, और उससे भी अधिक होगा
स्मरण,
इसको कहते हैं लय। जब ये तीनों में नहीं हो और स्मरण करने में भी एकदम शांत चित्त से, कनिष्ठ चित्त से गुरु का मंत्र का जो दिया है ध्यान हो रहा है बड़ा उत्साह के साथ में, मनन हो रहा है, तब तो ये लय नहीं हुआ, अन्य तो फिर निष्ठा नहीं हुई। अच्छा, ये लय नहीं है, आप लोग विचार करके देखेंगे ऐसा होता है कि नहीं। मैं समझता कि अधिकांश लोगों को ऐसा होता है, अंततः स्मरण में जो भी हो जाता है, चिंतन में करने में, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको उसमें आनंद आता है, उनका सौभाग्य। एक होता है विक्षेप, लय विक्षेप अप्रतिपत्ति कषाय, और ये पांच चीजें जब हट जाए तब समझो कि अभी निष्ठा आई है। तो अभी पहला बतलाया है लय का, दूसरा विक्षेप, आप स्मरण करेंगे तो तरह तरह की जितनी दुनिया भर की चिंताएं हैं वो आएंगी, दुनिया भर की चिंता मन खाली रहता है, देकर के आराम से पलंग पर सोने के लिए वो तरह तरह की चिंता, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, चाहते ही ना है बार बार हटाते हैं, ऐसे आ रहे हैं जैसे कि कोई नदी में या समुद्र में तालाब में जब आदमी पानी भरता है और तरस उठा लेता है, तो वो पानी वहां का जो रिक्त हुआ वो कैसे भरता है, देर लगती है, हर हद तक वहां पर पानी आकर के बराबर, ऐसे चित्त को खाली कर दे करके ये सब चीज, तरह तरह की बातें जो हमने किया है करेंगे उसका प्लान सब आता है। यहाँ तक ऐसा आएगा जो आपने अपनी चिंता में की मनुष्य देखा, एक बंदर देखा, और उस समय में देख रहे हैं क्या, आधा मनुष्य आधा बंदर, बेकार की चीजें सब आते, इसको कहते हैं देखिए। स्मरण अधिक होगा, श्रवण में कम होगा, और कीर्तन में
और कम
होगा, किंतु ये होगा। तो समझो जब ये निष्ठा नहीं आई, जब ये एकदम चली जाएंगी, सब समय जब भगवत चिंतन कर रहे हैं कृष्ण की, तो कृष्ण मंत्र जब कर रहे हैं गोपीजन बल्लभ इत्यादि का, एक मंत्र बन गया, हे वस्तु में चित्त लग गया, नहीं तो ये विक्षेप हुआ, विक्षेप नहीं होना चाहिए। विक्षेप जब है तो सभी निष्ठा नहीं आई। और एक है अप्रतिपत्ति, इच्छा तो है जो नाम करूं, इच्छा करती है जो मैं श्रमण करूं, इच्छा करती है मैं ध्यान करूं, किंतु रुचि ही नहीं लगती, मन ही नहीं लगता। बैठ करके हरि नाम कर रहा था, जब मन नहीं लगा तो थोड़ा सा टहलने लगा, तो टहल टहल तो देखा जो एक आदमी खड़ा है। भाई यहाँ पर किस लिए खड़े हो? हरे कृष्णा। किस लिए खड़ा है भाई? मन नहीं लगता इधर, तो इसलिए टहलते हैं। टहलने के बाद में बातचीत करते हैं, बातचीत करते हैं उसमें रम जाते हैं। ये क्या हुआ? सामर्थ्य नहीं है, इच्छा फल मन ही नहीं लगता। कभी कभी ऐसा होता है कि हरिनाम कर रहे हैं और चित्त इधर उधर जा रहा है, और देखा है एक लड़का एक टेबल पर ग्लास पानी में रखा था, उसको उलट दिया, और यहां से मैं देख रहा हूं, ये देख रहा हूं, ये दोष किसका है? उस बच्चे का दोष है ना हमारा दोष? हमारा चित्त इधर उधर जा रहा है, देखा जो उसने ग्लास ऊपर से गिरा दिया, कुछ करके माला को रख दिया, थप्पड़ दे ये किसका? अब तुम्हारा चित्त शांत तुम नहीं कर रहा, अब बच्चे पर वो तुम दे रहा है। इसलिए हरिनाम यदि एकाग्र में करता है, हरी कथा सुन रहा है, तुमको डांटने का मौका कहां? एक निश्चित चीज से हरिनाम करो, एक निश्चित से श्रवण करो। यहां पर श्रवण कर रहे हैं तो वहां से कुछ आवाज आई, तो अब जो ठीक से नहीं सुन रहा था, अरे भाई देखो तो वो दौड़ करके जाएगा, हरी कथा छोड़ करके जाएगा, उसको मना कर दीजिए। क्यों? निश्चय से नहीं सुन रहा, दूसरा जाकर के पीट पाट दिया उसको, सबका चित्त उधर में आकृष्ट कर दिया। इसलिए ये कषाय कराए, हरिनाम करते समय में, हरि कथा श्रवण करते समय में और स्मरण करते समय में यदि क्रोध हो, किसी प्रकार की कामना हो, लोभ हो, अभिमान हो, इसको कहते हैं कषाय। कषाय माने काला रंग, खराब रंग, मन को उसमें उस समय भगवान न तो कीर्तन होता है न स्मरण होता है। यदि कीर्तन कर रहे हो और कोई सांसारिक चीजें याद आ गई और देखा कि वहां पर हानि होगी, कोई हानि कर रहा है, उसमें क्रोध भी हो सकता है, लोभ के वजह से उस कीर्तन को छोड़ करके चले जा सकते हैं। एक हरिनाम संकीर्तन भक्ति कर रहा है, परीक्षित महाराज जी हरि कथा सुन रहे हैं, और उस समय राज्य में कोई विप्लव हो गया, परीक्षित महाराज जी उठ करके जाएंगे कि नहीं विप्लव को दूर करने के लिए, शांत करने के लिए? नहीं जाएंगे। एक चित्त से बैठे, उसी प्रकार से कीर्तन में, स्मरण में और ये सब में किसी प्रकार का कषाय था तो काम को लोह मत, मोह मत, सर ये इत्यादि नहीं होना चाहिए, किंतु थोड़ा सा ऊपर की स्टेज है, साधारण नहीं है, थोड़ी सी है। अभी अभी आरंभ नहीं भजन हुआ,
अभी
निष्ठा नहीं है, अभी केवल लालसा जगी है, रसा स्वाद ये भी दूर होना चाहिए। रस स्वाद किसको कहते हैं? विषयों का रस का स्वाद ले रहे हैं, क्या हरिनाम कर रहे हैं, किसी ने हमको 10,000 रुपए हमारे सामने लेकर के रख दिए, अब उस इतना आनंद हुआ, खुशी हुई, 10,000 रुपए अभी मिले, वाह, उठा करके पॉकेट में रख लिए, हरे कृष्ण कर रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है, रुपये का प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठा मिल रही है, कोई चीज ऐसी संसार की कोई चीज मिल गई, उसको कहते हैं रसास्वाद। विश्व में आस्वाद ले रहे हैं और इधर में हरिनाम और हरि कथा और इसमें रुचि करते हैं, इसको कहते हैं रसास्वाद। ये पांचों चीजें दूर होनी है तब निष्ठा आएगी, तब निष्ठा के अनुसार में भजन होगा। ये मापदंड है इसका, कितना हुआ? 1 घंटा हो गया है, कितना बच गया? तो निष्ठा तक समझिए, निष्ठा मैंने निश्चला बुद्धि, प्राण जाय बरु भजन न जाय, ये वहां पर प्राण जाय बरु वचन न जाय, प्राण जाय बरु ऐसी निष्ठा हो जाए। मन नहीं लगा कोई बात नहीं, हम तो करना है, हमारा चित्त इधर उधर जा रहा है, कोई बात नहीं, जाए कहां तक जाएगा, हमको तो भजन करना है, हम इतना करके 1,50,000 या जितना हमारा संकल्प है उतना नाम करेंगे, ठाकुर जी का पूजन अर्चन करेंगे, ठाकुर जी का प्रसाद बनाएंगे देंगे और उनका चिंतन करेंगे। बड़े चित्त नहीं लगता है कोई बात नहीं, हम तो कर कर रहेंगे और ये सब चीजें दूर हो गई तब निष्ठा। और निष्ठा कैसी है और रुचि कैसी है इसकी अवस्थाएं हैं हम अब कल कर रहे हैं।
महाराज ये आपका सत्संग सुनेंगे तो फिर 5 चली जाएंगी आगे
निश्चित
कर संगना गुरु वैष्णव का संग उनका उपदेश श्रवण निरंतर हरिना और ये जो प्रतिकूल चीजें हैं उनसे दूर रहे, अनुकूल चीजों के अनुसार में चले, अपने से उन्नत जो वैष्णव है उनका संग हो।